मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 23 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली एकेडमी की क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है मधु कुमारी, आप समस्तीपुर बिहार से हैं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे जैव विविधता के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा, लेकिन आइए कुछ दूसरी खबरों को हम लोग पहले देख लेते हैं। इंडोनेशिया के बारे में आज आपने अखबारों में शायद पढ़ा हो कि इंडोनेशिया में एक बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई है। वहां चुनाव हुए थे, चुनाव में जो अभी वहां के राष्ट्रपति हैं उनको निर्वाचित घोषित किया गया, लेकिन जो उनके विपक्षी दल के नेता थे वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद को निर्वाचित मान रहे हैं। और इसके कारण इंडोनेशिया में बहुत विचित्र सी स्थिति बन गई है, बहुत ही ज्यादा सेना वगैरह के साथ संघर्ष होने लगे हैं। ये मैं केवल अभी आपको एक संकेत के रूप में बस बता रहा हूं, आगे अगर चीजें और बहुत ज्यादा गंभीर रूप लेती हैं तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। एक न्यूज आपने और रेडियो पर सुनी होगी, और शंघाई सहयोग संगठन को लेकर के जहां हमारी विदेश मंत्री गई हुई है उस बैठक में, मुझे लगता है कि शंघाई सहयोग संगठन के बारे में आपको थोड़ा सा जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं ऑलमोस्ट, उनका एक संगठन है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है अक्सर SCO, एस शंघाई, सी कोऑपरेशन, ओ ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी और कुछ देशों ने मिलकर के इस संगठन को बनाया था, उस समय भारत इसमें शामिल नहीं था। 2001 में ये मतलब हस्ताक्षर किए गए, 2002-3 में ये काम करना शुरू करता है। इसका जो पर्पस था कि जो कुछ देश हैं, इसमें यूरोप के देश हैं और एशिया के भी देश हैं, दोनों ही आप यूं कह लीजिए कि कॉन्टिनेंट महाद्वीप के देश हैं, इसीलिए इंग्लिश में आपको यह शब्द पढ़ने को मिलेगा यूरोएशियन, मतलब यूरोप और एशिया दोनों के। यह बेसिकली यूरोप और एशिया के कुछ देशों के द्वारा निर्मित एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक मामलों पर, आर्थिक मामलों पर और सुरक्षा के मामलों पर, सुरक्षा शब्द आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी हो गया है, आपस में सहयोग करेंगे। तो ये तीन इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा। इसके जो मेंबर्स हैं, मैं आपके बस ध्यान में लाने के लिए आपको बताना चाहूंगा, चाइना और रसिया तो दो बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, वो इसके सदस्य हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब ये देखिए जितने भी तान है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशिया में ही, सब पहले रशिया में ही थे। जब रशिया का विघटन होता है 1991 में, तब ये उससे अलग होकर के स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं। ये इसके फाउंडर मेंबर हैं, शुरू में ही थे। भारत और पाकिस्तान बाद में 2017 में इसके सदस्य बनते हैं, राइट? तो इसीलिए भारत के लिए यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चीन इसमें है। अब आप देखिए कि जो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अगर आप मैप में जम्मू कश्मीर की तरफ जाकर के देखेंगे तो यह हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो चूंकि हमारे पड़ोसी देशों का यह संगठन है और भारत भी इसका सदस्य है, तो स्वाभाविक रूप से भारत के लिए यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए जब भी शंघाई सहयोग संगठन के बारे में आपको कुछ पढ़ने जानने को मिलता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट के तहत आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया जा रहा है, और भी हैं राहें टाइटल से। देखिए, जब आप इसका शीर्षक पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या और भी है राहें का क्या मतलब हुआ। ये जो और भी है राहें, इसका मतलब है कि रोजगार के लिए और भी दूसरे तरीके हैं। लेकिन जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो रोजगार के आपको इसमें ढेर सारे तरीके नहीं मिलेंगे, ढेर सारी राहें नहीं मिलेंगी। बेसिकली ये आर्टिकल सही मायने में पर्यटन पर केंद्रित है, पर्यटन, और पर्यटन की संभावनाएं भारत में अद्भुत हैं, अनंत हैं। अगर भारत अपने पर्यटन की संभावनाओं का ही केवल दोहन कर ले तो आप इमेज ही नहीं कर सकते कि भारत कहां का कहां पहुंच सकता है। इस आर्टिकल में बहुत खूबसूरत तरीके से कुछ डेटा दिए गए हैं और कुछ देशों से तुलना भी की गई है, जैसे थाईलैंड। तो ये जो तुलनाएं हैं, जो डेटा हैं, मुझे लगता है कि यदि आप इन्हें नोट कर लेंगे तो पर्यटन पर यदि कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है, और यहां तक कि कुछ साल पहले पर्यटन पर सीधे सीधे निबंध लिखने को आया था, तो उसमें यह आर्टिकल आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। तो मित्रों, ये करेंट कंटेंट से संबंधित कुछ बातें थी। आइए अब मैं बात करता हूं आज के मुख्य विषय पर, जैव विविधता। पहली बात तो यह है कि मैंने इस विषय को चुना क्यों। दो कारण हैं। पहला तो यह है कि आपके सिलेबस में ही है। अगर आप अपने जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर को उठा करके देखें, जो आप मेंस का है, तो उसका नाम है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर बायोडायवर्सिटी, सीधे सीधे बायोडायवर्सिटी है, और इसके बाद एनवायरमेंट भी है। जनरली हम एनवायरमेंट में ही बायोडायवर्सिटी को शामिल कर लेते हैं, लेकिन देखिए इसमें बायोडायवर्सिटी अलग से है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपके सिलेबस में है। तो चलिए, सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें होती है, तो आज ही इसके बारे में क्यों। उसका जस्टिफिकेशन फ्रेंड्स ये है कि जो 22 मई है, यानी कि कल जो दिन बीत गया है, उसे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। 22 मई को आप यूं कह लीजिए कि जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और न्यूज में आपने सुना होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति जी ने इस समय पूरी दुनिया को और अब हमारे देश को, देशवासियों को एक संदेश दिया था। ये यूएनओ के द्वारा सैंक्शन्ड है, याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बकायदे इस तिथि की घोषणा की है, और 2010 को बकायदे जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। यानी कि जैव विविधता, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो अपने आप में लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन में इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो बायोडायवर्सिटी पर आप यूं कह लीजिए कि अगर टोटल थर्ड पेपर में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसकी संख्या लगभग एक ही है। अगर 2017 में देखेंगे तो आपको बायोडायवर्सिटी पर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन 2018 में बकायदे बायोडायवर्सिटी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। बेहतर होगा कि मैं उस क्वेश्चन को आपको बताऊं, क्योंकि जब हम किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको जान लेते हैं, तभी हम इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर हमें किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। तो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, वह है, भारत में जैव विविधता किस प्रकार अलग अलग पाई जाती है, वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण में जैव विविधता अधिनियम 2002 किस प्रकार सहायक है। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, हाउ डज बायोडायवर्सिटी वेरी इन इंडिया, हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है, देखिए, जब हम बायोलॉजिकल शब्द पढ़ते हैं, बायोडायवर्सिटी टाइप के शब्द पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा साइंस से जुड़ा हुआ विषय है तो ये कठिन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, और अगर थोड़ा सा कठिन लगे भी तो आप अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाइए कि वो इस कठिनता को सरलता में बदल सके, राइट? तो मैं थोड़ी सी बातें आपको जैव विविधता के बारे में, थोड़ी सी बातें जो बहुत ही बेसिक है, वो बताना चाहूंगा। देखिए, जब हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इस धरती पर एक तो मनुष्य है, ठीक है, जीव के रूप में एक मनुष्य है। दूसरे आप ये कह लीजिए चट्टान वट्टान नदियां हैं, ये हैं। और जो तीसरा वर्ग है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला वर्ग है। इसके तहत हम जिन चीजों को लेते हैं, उदाहरण के तौर पर कीट पतंगे जिसे आप कहते हैं, जितने भी पौधे हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी जीव हैं जिन्हें आप जंतु कह लीजिए, कवक, एल्गी, फंगस, वायरस, ये जितने भी चीजें हैं, मतलब वो छोटे से छोटे जीव से लेकर जिसे हम माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते, से लेकर के बड़े बड़े जीव तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं और जो हिंसक है, वो सब के सब मिलकर के बकायदे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। तो यहां आपका दिमाग में एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि जनरली जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो मैंने पाया है कि ज्यादातर स्टूडेंट उसे पर्यावरण से जोड़ लेते हैं। नो डाउट कि जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है वो पर्यावरण का ही एक हिस्सा है, लेकिन जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो उसमें फिर सारी चीजें आ जाती हैं। हमारे नदी आ जाएंगे, हमारे समुद्र आ जाएंगे, वायु आ जाएगी, अंतरिक्ष आ जाएगा, पूरा का पूरा पृथ्वी मंडल, अंतरिक्ष मंडल, वायुमंडल आ जाएगा। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें कुछ सेलेक्टेड चीजें आती हैं। इस पृथ्वी पर कितनी तरह की जैव विविधता है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी तक 14.35 लाख, यानी कि 14,35,000 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। आप सोचिए 14,35,000, हालांकि यह माना जाता है कि इससे ज्यादा भी प्रजातियां अभी हैं जिनकी पहचान की जानी बाकी है। दोस्तों, इसके महत्व के बारे में मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत होगी। देखिए, हमें जो भोजन मिलता है, जो हमें कपड़ा मिलता है, जो हमें ईंधन मिलता है, जो हमारे पशुओं के लिए चारा मिलता है, जो कृषि की पैदावार होती है, जो हमें वनस्पति औषधियां मिलती हैं, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने वाला जो क्षेत्र है वो कह लीजिए कि बायोडायवर्सिटी हमें पर्यावरण प्रदूषण से बचाता है, जो मिट्टी का निर्माण होता है, पूरे के पूरे इस जीवन चक्र में या संसार चक्र में जो पोषक चक्र है, जो हमें अनाज उपलब्ध कराता है, या पूरे के पूरे जीव जंतुओं का जो पेट भरता है जिसे आप पोषक चक्र कहेंगे, वो सब के सब इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की ही देन है। और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस तरीके से खत्म हो रही है, इनफैक्ट उसके कारण बिल्कुल वही है जो कारण एनवायरमेंट के नष्ट होने के हैं, इसलिए मैं उस पर अलग से बताने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ ली होगी, ज्योग्राफी पर आपकी तैयारी हो गई होगी, तो आप पाएंगे कि उसमें बताया जाता है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से वो सबसे ज्यादा समृद्ध है। वहां विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं और जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो हिमालय का क्षेत्र है इस मायने में बहुत समृद्ध है। और इसके बाद फिर हमारा जो पश्चिम घाट है, ये दो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की दृष्टि से भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र माने जाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी और इम्पोर्टेंस मैंने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की दी है। अब मुख्य विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इनमें से दो दोस्तों के नाम हैं, शंकर दयाल अलवर राजस्थान से और चंदन उपाध्याय कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।